मौर्यत्तर काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाणों का आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानियों द्वारा किए गए आक्रमण का नेतृत्व करता डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने 220 से 175 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसने शाकल, जो अभी पाकिस्तान के सियालकोट में है, उसको अपनी राजधानी बनाया। इतिहासकार जस्टिन डेमेट्रियस को भारत का राजा बताता है। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिलिंद या मिनांडर एक महान शासक था। भारत आने के बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने अपने समकालीन विद्वान नागसेन या नागार्जुन कहें से बौद्ध धर्म के विषय में संवाद किए। ये जो संवाद हैं वो मिलिंद पन्हो नामक एक पुस्तक में संकलित है। ये पाली साहित्य में पाए जाते हैं। राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य हुए वार्तालाप का जो जिक्र है वो उसके अंदर है। मिनांडर की मुद्राएं चांदी व तांबे की हैं। हिंदू यूनानी शासक में सबसे ज्यादा सिक्के मिनांडर के हैं। अब इनका जो वंश था आगे भी चला होगा वो देखते हैं। यूक्रेटिया डाइस डीज वंश। डेमेट्रियस जो कि बैक्ट्रिया का शासक था, इसी के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। इसके बैक्ट्रिया से हटते ही बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स का विद्रोह हो गया। यूक्रेटाइड्स का भी भारत पर हमला हुआ। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के प्रथम शासक एंटियल किड्स ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में विदिशा स्थित शुंग वंशीय 9वें शासक भागभद्र के दरबार में अपना दूत बनाकर हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस ने भारत आकर भागवत धर्म ग्रहण किया। अब देखते हैं कुछ विशेष बातें यूनानियों के आक्रमण के बारे में। यूनानियों के आक्रमण से भारत पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय ज्योतिष में भी यूनान का प्रभाव दिखाई देता है। किस किस चीज को प्रभावित किया? ज्योतिष को प्रभावित किया। और सांचे में ढाल के मुद्रा बनाने की जो कला है वो यूनानियों से सीखी। यूनानी शासकों के लेखों में खरोष्ठी व यूनानी लिपि मिलती है तो वो भी सीखी। भारतीय रंगमंच पर भी यूनानी प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो पोशाकें हों, चाहे हाव भाव हों, या जो भी है नाटक कला, रंगमंच पे प्रभाव दिखाई देता है। चिकित्सा विज्ञान में भी यूनान का प्रभाव आया। गांधार व मथुरा कला शैली यूनानी प्रभाव से भरे पड़े हैं। ये गांधार जो कला है ये बेसिकली हमने यूनानियों से ही सीखी। भारतीयों ने अनेक यूनानी शब्दों, कलम, पुस्तक इत्यादि को ग्रहण किया। ये यूनान से ही आए थे, कलम, पुस्तक, ये सब। चलिए अब अगले देखते हैं। शक, शकों ने आक्रमण किया था। शकों के बारे में जानते हैं। हिंद यवनों के बाद मौर्योत्तर काल में भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शक द्वीप कहा गया है। शकों की मुख्यतः दो शाखाएं थी, उत्तरी शक और पश्चिमी शक। उत्तरी शक जो थे वो तक्षशिला और मथुरा में थे, और पश्चिमी शक नासिक और उज्जैन। भारत में शक पूर्वी ईरान से क्षेत्र से होकर आए थे। उन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र प्रदेश से यवन सत्ता को समाप्त करके उत्तरापथ व अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहलाते थे। क्षत्रप कहा जाता था उनको, राजा नहीं कहते थे। शक भारत में आने के बाद दो भागों में बट गए, उत्तरी तथा पश्चिमी, जैसा कि अभी बताया। उत्तरी शक के शासक माओज को भारत का प्रथम शक विजेता कहा जाता है। तो शकों के बारे में बस इतना ही महत्वपूर्ण है, बस जान लेना। अब जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश जो था वो पार्थिया से था। ये मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था उसे मिथ्रदास प्रथम कहते हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोंडोफर्निस था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर से प्राप्त हुआ है। इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। जो पल्लव राजा थे उनके सिक्कों पर धार्मिक उपाधियों का जो उत्कीर्णन किया गया है। गोंडोफर्निस के काल में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस का दल भारत आया था। अब चलिए कुषाण राजवंश के बारे में जानते हैं। कुषाण वंश का राजनीतिक इतिहास चीनी स्रोतों से प्राप्त होता है। इस वंश का शासक विमकट विशेष जो था उसने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कुषाण जो थे यूची जाति के एक शाखा के से थे जो चीन से थी। इसका एक बहुत महान शासक था कनिष्क। अब कनिष्क के बारे में जानते हैं। कुषाण राजवंश का ये सबसे महान शासक था। उसके लगभग 12 अभिलेख तथा बहुसंख्यक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। कनिष्क ने शक संवत चलाया था, यही उसके राज्यारोहण की भी तिथि है। इसने शकों को हराया था और उसी के उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया था। कनिष्क की दो राजधानियां थी पेशावर और मथुरा। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। कनिष्क ने मध्य एशिया में काशगर, यारकंद, खेतान आदि प्रदेशों पर आधिपत्य की स्थापना कर पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। अपने प्रारंभिक वर्षों में कनिष्क बौद्ध हो गया था। उसने पेशावर में चैत्य का निर्माण कराया। चीन के राजा पान चाऊ ने कनिष्क को परास्त किया था। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। एक तो थी सौंदरानंद, बुद्धचरित और सारिपुत्र प्रकरण। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र पाहानुषाही कहा गया है। कनिष्क के जो राजवैद्य थे वो चरक थे, चरक संहिता की रचना का। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राज्याश्रय भी प्रदान किया था। कनिष्क के पुरोहित का नाम संगरच्छ था। विभास शास्त्र के जो रचनाकार थे वो वसुमित्र थे और नागार्जुन तो उसके समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। कनिष्क के जो उत्तराधिकारी थे वो हुविष्क थे। और जो हुविष्क के समय उसके समय में कनिष्क के समय में पेशावर जो था इनका शक्ति केंद्र था और उसके बाद शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो हटके मथुरा बन गया। कनिष्क के जो वंश था उसका अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति मिली है जिससे उसके यूनानी संपर्क से दूर होने की पुष्टि होती है। इसी काल में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ। और भी काफी कुछ हुआ वो जानेंगे हम कुषाणकालीन स्थापत्य और कला में। चलिए देखते हैं। बौद्ध कला का विकास कुषाण शासकों के संरक्षण में होता रहा। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिला एक टावर बनवाया। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया गया। इसी के पास कनिष्क ने एक विशाल संघाराम जिसे कनिष्क चैत्य भी कहा जाता है का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलेस द्वारा करवाया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में शिरकप नामक नगर की स्थापना की। कनिष्क के शासनकाल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली गांधार कला शैली और दूसरी मथुरा कला शैली। चलिए अभी दोनों को जान लेते हैं।